खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। हो खत्म नहीं वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे, क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे। संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने, मन में कब आते हैं विकार खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने, चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े, ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे, करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले।
कल हुई बारिश को देखकर ये कविता, जो पहले भी कभी सुनाई थी, फिर याद आई। जब भी बारिश होती है तो सारा वातावरण बदल जाता है, धरती से एक खुशबू आने लगती है, वातावरण में जो तनाव है, जो गर्मास, वो जैसे कि अचानक चली जाती है। एयर फ्रेश हो जाती है, '54 में अमेरिका के एक लेखक ने, रिचर्ड नैश ने, एक कहानी लिखी थी, द रेन मेकर। इस कहानी में एक गांव है जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, लंबे समय से बारिश नहीं आई, और अचानक एक कॉन मैन, एक ट्रिक्स्टर वहां आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो छलावा करता है, और वो कहता है कि मुझे पैसे दे दो तो मैं बारिश लेकर आऊंगा। कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, पर सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, और ये कहानी विश्वभर के 50 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, अलग अलग रीति से। मैनेजमेंट कोर्सेस में इसको बताया जाता है, इस पर फिल्में बनी हैं जो दिखाई जाती है, अलग अलग रीति से स्टोरी में थोड़ा बदलाव करके, पर सबका भाव एक ही है कि एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मुझे पैसे दो तो मैं बारिश ला के दूंगा। लोग, कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, कोई लोग नहीं करते, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो एकदम सच्चा लगता है और उनको लगता है हाँ यही बारिश ला सकता है, क्योंकि उसकी आवाज में ऐसी पावर होती है। वो कहता है बस मुझे 5,000 रुपए दे दो तो मैं बारिश लाऊंगा। बुद्धिशाली बुद्धिजीवी उस पर हंसते हैं, पर कुछ कुछ नौजवान होते हैं जिन पर जो उस पर बहुत विश्वास करते हैं। और दिखाया गया है वो जिस गांव में आता है और जिस घरों में रहता है और जहां गया घूमता है वहां पर एक अनिश्चय की अवस्था है, लोगों में कॉन्फिडेंस कम है, परंतु उसके आने से ही सबका अपने आप में विश्वास बढ़ जाता है, कुछ और ही होने लगता है। लोगों को समझ में आता है कि 5,000 रुपए देने से बारिश कैसे ला सकता है कोई, पर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मुझे बस 5,000 रुपए दे दो तो मैं बारिश लाऊंगा। और जो जो उस पर विश्वास करते हैं अंत में दिखाए बारिश हो जाती है। तो इस कहानी का भारतीय वर्शन भी है, द रेन मेकर। तो इसमें भी वो जो व्यक्ति आता है जिसको कोई नहीं जानता वो कहां से आया है, वो क्या करता है, पर वो बस एक ही वादा करता है, मैं बारिश लाऊंगा और मुझे पैसे दो तो ही लाऊंगा। और लास्ट में बारिश आ जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है कि मनुष्य का मन संशय से भरा रहता है, हर चीज में संशय, हर चीज में संशय। इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं होती है क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं बन पाता। अगर कोई कहे कि ये 5 दिन करो तो ये परिणाम होगा तो सबसे पहले तो डाउट, तुमने किया क्या, किस किसने किया, क्यों करे, क्या जरूरत है, ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो कल जो बारिश आई आबू में, सारा वातावरण बदल गया, धरती से खुशबू उठ रही है, पेड़ भी बहुत खुश है और पंछी क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है, लोग उससे कहता है कौन सी बारिश तुम लाओगे, सच्ची मुच्ची वाली बारिश। अब उसका उत्तर, हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिसल फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, जिसे पानी भी कहते हैं। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में कन्नी, कन्नड़ में नीर, बांग्ला में जोल, संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, पय अमृत भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वा प्योर, अंग्रेजी में इसे वाटर, फ्रेंच में ओवा, और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुहाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी यह पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो और मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। सुंदर, सस्ती, टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में दे कोई तो चोर की सजा वो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदिए, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ बारिश। तो वो एक सौदा करता है कि 5,000 रुपए दे दो तो बारिश मैं दूंगा, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। ये प्ले 1954 में लिखा गया था, अमेरिका में फर्स्ट टाइम प्ले हुआ था स्टेज पर, और उसके बाद में न मालूम विश्व भर में अलग अलग जगह पर होटल्स, मैनेजमेंट कोर्सेस, MBA में इसको सुनाया जाता है कॉन्फिडेंस के लिए। जहां काम कर रहे हो वहां कॉन्फिडेंस, स्वयं में कॉन्फिडेंस, स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, विश्वास। बाबा भी कहता है मैं स्वर्ग पर, स्वर्ग किस पे लाया हूं, हथेली पर लाया हूं, पर पहले तुम ये करो फिर दूंगा, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सच्ची मुच्ची वाली बारिश। और सबसे बड़ा निश्चय है स्व के स्वरूप पर निश्चय, स्व की वास्तविकता पर निश्चय, बाकी सभी निश्चय बाद में। सबसे पहला निश्चय स्व। तो आज की जो मुरली है वो इसी स्व पर है, और इस मुरली में जो भी बातें हैं ये बहुत काम की बातें हैं रोज सुबह अमृत वेला करने के लिए। साइकोलॉजी में एक ट्री बनाया जाता है जिसको कहते हैं मी ट्री। जिसमें एक झाड़ बनाया जाता है, उसमें अपने विषय में पेशेंट को लिखने के लिए कहा जाता है, माय फेवरेट पेट, माय फेवरेट डिश, माय फेवरेट हॉबी, सब अपने विषय में, नेम ऑफ पेरेंट, नेम ऑफ मदर, हिस्ट्री। एक झाड़ जिसमें माय एम्बिशन, सब कुछ मैं क्या हूं। क्योंकि एक पेशेंट डिस्टर्ब कंडीशन में आता है तो साइकोलॉजिस्ट को उसके बारे में सब कुछ जानना है पहले, तो उसे एक चार्ट दिया जाता है और कहता है ये मी ट्री को भरो। पर्सन्स हुम यू हेट मोस्ट, कौन से लोग हैं जिनसे तुम नफरत करते हो। पर्सन्स हुम यू लव मोस्ट, ऐसी कौन सी घटनाएं जीवन में हो गई जो अब तक भूले नहीं हो, वो ऐसी दो घटनाएं लिखो। कौन सी चीज है जो तुम चाहते हो पर हो नहीं रही है, तुम्हारी एम्बिशंस क्या है, एम क्या है, क्या बनना चाहते हो, क्या बनना नहीं चाहते हो, क्यों ऐसे हो, क्यों दुखी हो, क्यों खुशी हो, ऐसी सब कुछ बातें उसमें लिखी जाती है। पर आज हम इसको लेंगे एक दूसरे रीति से, और रोज सुबह का अमृत वेला है उसमें ये सारी चीजें करनी है, और रोज हम कर ही रहे ऑलरेडी, नया कुछ भी नहीं है। वो कौन सी चीज है, तो वो है हमारे पांच स्वरूप। परंतु उस पांच स्वरूप में हम एक एक स्वरूप की साथ साथ बातें लेंगे। तो ऐसे पांच झाड़ यहां बने हुए हैं। एक है परमधाम, इसकी सात बातें। फिर है सतयुग, इसकी सात बातें। फिर है द्वापर, इसकी सात बातें। संगम युग के हमारे स्वरूप की सात बातें, और फरिश्ता रूप, उसकी सात बातें। ये सबसे पहला निश्चय है, रोज का जो योग है हमारा इसी पर आधारित है। हम यही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आज उसे और अच्छे से याद करेंगे और याद कर लेंगे। कल हमने देखा था तपस्या, अर्थात 12 बातें थी। पहला तपस्या अर्थात ब्राह्मण जीवन की विशेषता, तपस्या अर्थात एक की लगन में मगर, तपस्या अर्थात सूरत और सीरत में क्या, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, प्यूरिटी की रॉयल्टी, तपस्या अर्थात संकल्प बोल दृष्टि वृत्ति कर्म में भी अंश ना हो, आंगन पवित्रता अर्थात विका स्वयं को भी अनुभव, दूसरों को अनुभव, फिर टच भी ना करे विकार। पॉइंट नंबर सिक्स रिसेप्शन, संकल्प में भी अपवित्रता टच ना करे। सिक्स स्वयं को भी अनुभव और दूसरों को भी अनुभव, किस बात का, प्यूरिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी का, पर्सनालिटी और रॉयल्टी, उसके बाद में विशेष महान आत्मा है, उसके बाद में बिजी, सदा बिजी, संकल्प बोल, कहीं पर भी कोई टाइम वेस्ट ना हो, उसके बाद में ऊपर छोटी छोटी बातें हमको डिस्टर्ब ना करे, प्रभावित ना करे, वो सब साइड सीन से। प्योरिटी हायर स्टेज है चेतना की, छोटी छोटी हजारों चीजें होती रहेगी, एक ही दिन में 100 बातें होती है, किसी का कुछ दिखेगा, किसी का कुछ दिखेगा, क्या क्या याद रखोगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और आज जो कहते हैं कल बदल जाते हैं, आज महिमा करने वाले कल ग्लानी करते हैं, आज निंदा करने वाले कल इतनी महिमा करते हैं कि सबसे ज्यादा पब्लिसिटी वही करते हैं जो सबसे ज्यादा जिन्होंने ग्लानी की थी। उल्टा पुल्टा होते रहता है संसार में। उसके बाद में अगला, औरों को वो फैले अनुभव, अगला ऊपर भंग और तपस्या। तपस्या क्या है? तेरा। और तपस्या भंग क्या है? मेरा। तो ये 12 बातें कल हमने देखी थी तपस्या की, आज हम देखेंगे परम धाम में जब हम जाते हैं तो वहां 7 चीजें हमें याद करनी है स्वयं के बारे में। सबसे पहली परम धाम की 7 बातों में पहली बात है 7 स्वरूप। पहली बात 7 स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। परम धाम में पहुंचते ही मैं आत्मा क्या याद कर रही हूं? अपने निज स्वरूप को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को। यह है फर्स्ट पॉइंट। तो जैसे ही परम धाम जाओ तो सबसे पहले क्या याद करेंगे? कहीं से भी चालू करो, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त भक्ति में ऐसा गाते हैं। ये शब्द में बहुत पावर है, सत हूं, चिद हूं, आनंद हूं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञानमय हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। कभी कभी ये स्वरूप शब्द भी बार बार रिपीट करने से अपना प्रभाव कम कर देता है, तो केवल कहो मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं, मैं आनंद हूं, क्योंकि शब्द अगर वैसे के वैसे रिपीट करते रहे लंबे समय तक तो वो अपना प्रभाव कम कर देते। इसके लिए शब्दों की फेरबदल, शब्दों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, शब्दों के साथ खेलते रहना। तो सबसे पहला निज स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप। दूसरा परम धाम में अभ्यास करेंगे निर्वाण हूं, अर्थात साउंडलेस। निर्वाण धाम में मैं निर्वाण हूं, यहां कोई आवाज ही नहीं और ना ही मुझे आवाज अच्छी लगती है। फिर उसका थोड़ा विस्तार करो वहां बैठकर कि मैं निर्वाण हूं, साउंडलेस हूं, शब्दों से परे हूं, शब्दातीत हूं। ये मुख मेरा है, इससे क्या निकलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। दिन भर में कितने हीनता के भाव निकल जाते हैं हमारे मुख से। इस मुरली में भी कहा है मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो दूसरा मैं निर्वाण, तीसरा निराकार, आकार नहीं और शरीरी, मैं क्या हूं? तीसरा निराकार हूं। और अब इसमें स्थित हो जाओ थोड़ी देर कि आकार नहीं अनाकार हूं। दूसरा शब्द प्रयोग करो, एक है निराकार एक है अनाकार, अलग अलग शब्दों का प्रयोग। परमधाम में स्थित हूं, सात स्वरूप ले लिए, निर्वाण हूं, निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं, न स्त्री न पुरुष। अगला
निर्बंधन हूं,
कोई बंधन नहीं है। अब इसमें एंजॉय करो स्टेज को, वहीं रहकर मैं निर्बंधन हूं। और ये कहते ही जो बंधन है यहां पर वो सारे गिर गए, खत्म हो गए, नाश हो गए। उनको थोड़ा सा याद भी स्विच ऑन स्विच ऑफ, करंट ऑन करंट ऑफ।
तो दूसरा तीसरा निराकार, चौथा
निर्बंधन, मैं निर्बंधन हूं, मेरे बंधन टूट गए। देखो परमधाम में हूं और बंधन थे और उनको गिरते हुए देखेंगे परमधाम से धरती पर। विजुअलाइजेशन, ऊपर से टूट रहे रस्सियां, जंजीरें, सलाखे, जो भी है वो सब, जो पिंजरा था मैं वहां हूं और पिंजरा नीचे, पंछी ऊपर, धर से एक 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 नीचे गिर गए। और फिर अनुभव करना कि मैं निर्बंधन हूं, मुझे बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं फ्री हूं। अलग अलग शब्द स्वतंत्रता के गीत गाना, मैं निर्बंधन हूं, बंधन मुझे अच्छे नहीं लगते। एक तो ये वाक्य है, बंधन मुझे अच्छे नहीं लगते, और उसके भी पावरफुल एक दूसरा वाक्य है, मुझे बंधन स्वीकार ही नहीं है, आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस, मुझे बंधन स्वीकार ही नहीं है। मैं अस्वीकार करता हूं और बंधन को, मुझे बंधना पसंद नहीं है। गुलामी का जीवन सबसे बुरा जीवन, सबसे खराब जीवन कौन सा है? तो कौन सा है, एक गुलाम का जीवन, उसका अपना कुछ है ही नहीं, गुलाम है वो। अब गुलाम को अच्छे कपड़े पहना दो, डेकोरेट कर दो, पर उसको गुलाम ही है, वो गुलाम ही रहेगा। फिर A slave is slave, whether whipped or made to sit on throne. स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है अमेरिका के एक स्पीच में, गुलाम गुलाम ही है, चाहे उसे कोड़े से मारो या उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर कहीं बिठा दो ऊपर, पर वो गुलाम ही रहेगा। गुलामी का जीवन, बंधन का जीवन, दास्ता का जीवन, ये मुझे पसंद ही नहीं है। भारत में गुलामी किसी को ही पसंद नहीं थी, इसलिए इतना स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सबके अंदर एक ही तो आग थी, क्या स्वतंत्रता, हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम किसी की जागीर नहीं, हम इनकलाब है। क्योंकि गुलामी में दुख है, गुलामी में दुख है, दासता में एक पीड़ा है, एक दास का जीवन सबसे बुरा जीवन है। भीष्म अपने निर्णायक युद्ध से पहले, उसके जो भी दास होते हैं ना, जो उसके घावों को देखभाल करते, वो उनको कहते हैं आज से तुम मुक्त, वो कहते नहीं मैं आपकी सेवा करना चाहते, वो कहते नहीं, गुलामी का जीवन तुमने आज तक जीवा जिया, पर मैं जाने से पहले तुम्हें मुक्त करता हूं। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, निर्बंधन, और उसके साथ ये सारे संकल्प जोड़ेंगे, बंधन मुझे पसंद नहीं, बंधन मुझे स्वीकार नहीं, बंधन मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे बंधन गिर गए, मैं बंधनों को तोड़ दूंगा, काट दूंगा, तोड़ दूंगा, हटा दूंगा, आग लगा दूंगा बंधनों को। मुझे बंधनों से नफरत है, घृणा है। ये बंधन दुखदाई है, बंधन बांधते हैं, मुक्त नहीं होने देते। ऐसे संकल्प करने थोड़े से साथ साथ। फिर आ जाओ अगला, मैं निराधार हूं, परमधाम में आत्मा है, किसके सहारे लटक रही है? कोई रस्सी है क्या वहां, या नीचे से कोई प्रॉप, कोई सपोर्ट? मैं क्या हूं? निराधार। मुझे ना स्थूल आधार चाहिए, ना सूक्ष्म आधार, कोई आधार नहीं चाहिए। कौन कौन से आधार लेते हैं लोग संसार में? पहला शारीरिक आधार, चलने नहीं होता है किसी का हाथ पकड़ के चलना, लकड़ी का आधार। द लॉर्ड इज योर स्टाफ, स्टाफ उस लकड़ी को कहते हैं अंग्रेजी में, द लॉर्ड इज योर स्टाफ। बाबा कहते हैं ये लकड़ी के आधार पर तुम परमधाम से जाकर सतयुग में आ जाओगे। कौन सी लकड़ी के आधार से? साकार मुरली, लाठी, श्रीमत की लाठी को पकड़ पकड़ कर तुम परमधाम जाते हो और फिर सतयुग में आते हो। मुरली भी लाठी है, परम श्रीमत भी लाठी है, मर्यादा है भी लाठी है, इनको पकड़ोगे बल। तो एक है फिजिकल डिपेंडेंस, शारीरिक रूप से किसी पर आधारित रहना। जरा चाय लेके आना मेरे लिए, जरा पानी लेके आना, तुम उधर जा ही रहे हो। नौकरी रख लो एक अलग से, फिर प्राइवेट उधर जा रहे, मेरी थैली लेके आ जाना, मेरा ये लेके आ जाना, मेरा वो लेके जा, मेरे कपड़े लेके आ जाना। दूसरों को सेवाधारी समझते हैं, हाँ वो रखे नहीं है तुम्हारे लिए, परंतु पर कोई दिल से करना चाहता है कभी कभी अचानक एक दिन तो ठीक है, कुछ भूल गया, रोज ही ऑर्डर के रूप में और जो मिलता है उसको। तो मैं निराधार फिजिकल डिपेंडेंस से मुक्त। दूसरा एक है शरीर की निर्भरता, निर्भरता। दूसरी है मेंटल, इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल डिपेंडेंस है। दूसरे मेरे से अच्छे बात किए तो ठीक लगता है, दूसरे अगर निंदा करते हंसी उड़ाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो मेरी खुशी उन पर डिपेंडेंट है। या इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी का। स्त्रियों का ब्रह्मचर्य अलग है, पुरुषों का ब्रह्मचर्य अलग है, अगर देखा जाए तो अलग अलग, क्योंकि दोनों। बाबा ने तो कहा है पांच विकार पुरुष में, पांच विकार स्त्री में, परंतु पुरुष का जो ब्रह्मचर्य है और स्त्री का जो ब्रह्मचर्य है, जो स्त्री का ब्रह्मचर्य भंग होता है वो काम विकार की इच्छा के कारण नहीं होता है, वो रिलेशनशिप में एम्प्टीनेस के कारण होता है। उसको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और उसे एक सपोर्ट चाहिए, उसे एक कंपेनियन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक एक सिक्योरिटी चाहिए, एक साथी चाहिए, और रिलेशनशिप्स में एम्प्टीनेस है, एक अकेलापन है उसके जीवन में, लाइफ में अकेलापन है। वो अकेलापन भरने के लिए वो खुद के देह को समर्पित करने के लिए तैयार है। उसको अंदर में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको रिलीज करना है। उसके लिए किसी एक मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है। ये स्त्री का साइकोलॉजी, ये सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि कई आत्माएं ऐसी इन दोनों कैटेगरी से बाहर है, जो जन्म जन्म की तपस्विनी है। और अगर हम सब अपनी दादियों को देखें तो ये कौन आत्मा है? ये जन्म जन्म में साधु संन्यासी तपस्वी रही है, क्या कुछ तपस्या की है, इसलिए इस जन्म में नेचुरली सब कुछ है उनके पास, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। पर सबको वो अवस्था सबकी नहीं हो सकती, उनके इसमें वो है ही नहीं कि रिलेशनशिप में एम्प्टीनेस आ रही है। कोई पुरुष चाहिए, कोई पति मर गया है तो पति का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, तो कोई कुछ चाहिए। तो स्त्रियों में जो सपोर्ट चाहिए रहता है, या काम की तरफ जो ब्रह्मचर्य भंग होता है, उसका कारण होता है रिलेशनशिप्स में एम्प्टीनेस। एक सहारा या पैसा, ये सब चीजें। पुरुष में ये सब नहीं है। पुरुष में, पुरुष का एक ही शत्रु है, काम विकार। लस्ट इज मैन्स ओनली एनिमी। उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर है, वो उसकी फुलफिलमेंट चाहता है। और ये जरूरी नहीं अधिकतर सबका ही होगा, परंतु मैक्सिमम ऐसा होता है। वो उसको भरना चाहता है। और ये सर्किट यहां कंप्लीट होता है। फिर इसलिए ये गहरी इतनी कामना है कि सब सारे सुख है परंतु तृप्ति नहीं रहती है। वो तृप्ति यहां आती है आत्मा को, परंतु इस तृप्ति में बड़ा धोखा है, अल्पकालिक। इस तृप्ति में दोष है, इस तृप्ति में तृप्ति नहीं है, निरंतर एक असंतुष्टता है, एक दुख है, एक पीड़ा है, एक भ्रम सा है, बेचैनी रहती है, हलचल रहती है। और ये आ गया तो बाकी सारी हलचल आ जाती है, बाकी सभी विकार आ जाते हैं और ईश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि ईश्वर चिंतन नहीं होता है, देह चिंतन होता है। तो ये सब इसकी प्रॉब्लम्स है। तो तीसरी डिपेंडेंस इमोशनल, इमोशनली डिपेंडेंट है पुरुष पर, और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स का इतना नहीं होता है। उनको तो ठीक है, जाओ तो जाओ, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। तीसरी डिपेंडेंस है इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंस। अगर कोई काम दे दिया तुमको, भाषण देना है, तुरंत भागेंगे किसी के पास, भाषण लिख के दो, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, हमारी तो काम नहीं करती। कोई काम दे दिया कि ये करना है, ये मुझसे नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल वर्क है ये। कंप्यूटर पे कुछ करना है, हमको टाइपिंग ही नहीं आता है, नहीं आता है तो सीखो। हमको ये ड्रॉ करना ही नहीं आता है तो सीखो, कोई दूसरे से ये करके दो। हमको मोबाइल ही चलाना नहीं आता, ये जो टेस्ट दे रहे हैं जरा हमारा वो आईडी बना के दे दो। क्यों? दुकान में जब साड़ियां खरीदने जाते हो तो ढेर लगा देते हो, तब तो आता है सब, ये क्यों नहीं आता है? ये क्यों नहीं सीखा अभी तक? बाकी सब चीजें आती है, ये क्यों नहीं आता फिर? तो ये बुद्धि डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंट। अगला है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, पैसे। इसलिए जो मधुबन निवासी नहीं है या जो यहां नहीं रहते परमानेंट और संसार में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुमार जो जॉब करते हैं सेंटर वाले नहीं बाहर, उनके लिए ये सबसे बेस्ट नियम है कि किसी पर से भी पैसे की भीख ना मांगे, अपने पैरों पर खड़े रहो। फाइनेंशियल सपोर्ट, बाबा ने कहा है, दादी ने कहा है ना, चार भागों में विभाजित करो, यज्ञ के लिए रखो, भविष्य के लिए रखो, अपने लिए रखो, परिवार के लिए रखो। वो जो अभी अभी जो मुरली चली थी ना, लास्ट संडे के, लास्ट संडे की जब मुरली चली थी 90s में, उसके बाद ही दादी प्रकाशमणि का क्लास हुआ था जिसमें ये चार बातें दादी ने कही थी। कुमारों से मुलाकात, कुमारों पर क्लास चली थी ना अभी अभी, उसके बाद ही दादी का तुरंत क्लास हुआ था मधुबन निवासियों के लिए मेडिटेशन हॉल में, जिसमें दादी ने कहा था कुमारों को ये चार बातें। तो कुमार अर्थात फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पैसे की भीख मांगना ही नहीं है किसी से, थोड़ा लोन दे दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़े पैसे दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आर्थिक रीति से, क्योंकि जिससे हम पैसे लेते हैं हम उसके सूक्ष्म रीति से गुलाम बन जाते हैं, और जब नहीं दे पाते तो टेंशन। कितने सारे ऐसे कुमार हैं जिन्होंने पैसे का इन्वेस्ट किए और फिर वो कंपनी डूब गई, अब कर्जे में डूबे हुए, तो ये क्या कहेंगे इसको? इसके लिए अपने पैरों पर खड़े रहना है, पैसे नहीं मांगना है किसी से। और हो सके तो जो सेंटर पर जो बाहर रहने वाले कुमार, अपना भोजन खुद ही बनाओ, फूड के लिए और पैसों के लिए इंडिपेंडेंट, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना। तो अगली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है सोशल, सामाजिक। समाज पर हम बहुत रीति से निर्भर है, माना, परंतु ऐसी बहुत सारी अपनी दिनचर्या बना दो कि बहुत सारी चीजों पर हम निर्भर ना रहे, सामाजिक चीजें। जब हम ब्राह्मण समाज को ही ले लेते, अच्छा जब सब भट्टी अनाउंस होती है, अभी मधुबन निवासियों की भट्टी है, चलो आप भट्टी करेंगे, हमारी तो रोज ही भट्टी है, संगठित आज ये है, चलो आप ही करते, हाँ तब तो करना ही है, पर रोज ही करना है, भट्टी में तो करना ही है, परंतु जब वो होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ये नहीं, ग्रुप जब करेगा, समाज जब करेगा तब नहीं। ये भी एक डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस से मुक्त निराधार हूं, मुझ में कोई डिपेंडेंस नहीं, इनिशिएटिव लेना है, जब चार लोग करते तब हमको जागृत आती है मुझे भी करना है, ये नहीं। अगला, पुरुषार्थ में इंडिपेंडेंट, तुम चलो साथ में तो करेंगे, तुम चलो तो मुरली रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति चाहिए मुरली रिवीजन के लिए, कोई क्लास चाहिए तो समझ में आता है, कोई साथ में बैठ के पढ़े, दोनों मिलके पढ़ेंगे, नोट्स निकालेंगे, हाँ वो ठीक है, कोई है तो बहुत अच्छा है, पर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि वो जब चला जाएगा ना, और उसको तो जाना ही है, क्योंकि मनुष्य का मूड, आज तुम दोस्त तो आज कल दुश्मन, आज बहुत अच्छे लगते हो और कल ऐसे दुश्मन की बात मत पूछो। फिर एक्सरसाइज के लिए भी डिपेंडेंसी नहीं, वॉकिंग के लिए भी डिपेंडेंसी नहीं, दूसरा साथ चले तो वॉकिंग करेंगे, दूसरा साथ हो तो एक्सरसाइज करेंगे, योग के लिए डिपेंडेंसी नहीं, मुरली के लिए डिपेंडेंसी नहीं, निर्भरता नहीं किसी पर, धारणाओं के लिए किसी पर निर्भरता नहीं, पढ़ने के लिए किसी पर निर्भरता नहीं, भोजन के लिए साथ में ही बैठते, उसमें भी माया है बहुत बड़ी। सेलिब्रेशंस के लिए डिपेंडेंसी, सेवाओं के लिए डिपेंडेंसी, सेवाओं में डिपेंडेंट, वो चाहिए वो नहीं तो सेवा नहीं, ये भी डिपेंडेंसी है। तो हर चीज से डिपेंडेंसी, तो ऊपर क्या सोचना है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं निराधार हूं, सपोर्टलेस, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगला, मैं निर्लेप हूं, मैं निर्लेप हूं, मुझे पांच तत्व टच नहीं कर सकते, यहां के जो तत्व है ना कुछ भी टच नहीं कर सकते मुझे, तो बहुत बारिश भी हो जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पुरुषार्थ, बहुत धूप बहुत धूप बहुत धूप, इतनी पसीना आ रहा है गर्मी, या इतनी ठंडी ठंडी रहने दो, गर्मी रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो अपनी जगह पर, मैं निर्लेप हूं, आत्मा निर्लेप नहीं है, पर मैं निर्लेप हूं, ये आत्मा का समान है, स्थिति की अवस्था का ये नाम है कि मैं परम धाम में कैसी हूं, आत्मा निर्लेप हूं, वहां पर ये सारे तत्वों को इमर्ज करो कि ये कोई तत्व वहां नहीं है, ठीक है, यहाँ का कोई तत्व वहां नहीं है, इसलिए मैं अनडिटैच्ड हूं, अनअटैच्ड हूं, अलग अलग शब्द प्रयोग करो, डिटैचमेंट, अनअटैचमेंट, अटैचमेंट फ्री, अनासक्त, निरासक्त, अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनअफेक्टेड, नो इफेक्ट। तो परमधाम में कौन हूं, निर्लेप हूं। कितने हुए, छह। हम परमधाम के ट्री की तरफ है। अगला, निर्संकल्प हूं। सातवां, परमधाम में कैसा हूं, निर्संकल्प, और ये बोलते बोलते फिर शांत हो जाना, चुप हो जाना, और संकल्पों से अभी तक संकल्प कर रहे, परमधाम में भी संकल्प ही करना है एक्चुअली परमधाम की अवस्था में संकल्प रहित होना चाहिए, पर वहां पे भी तो संकल्प चलते ही है ना, क्योंकि निर्संकल्प हो जाना ये बड़ा मुश्किल है, थॉटलेस कभी होता ही नहीं है माइंड, पर संकल्प आप कैसे करो, ये वाले संकल्प, और धीरे 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 वो लास्ट संकल्प तक पहुंचो कि मैं कैसा हूं, निर्संकल्प, और यहां चुप हो जाओ, फिर भी संकल्प थोड़े बहुत तो चलेंगे, पर कम हो जाएंगे, बहुत कम 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 कम, कम। और केवल फिर अनुभव करो, वही अपने पहले वाले को लेकर, शांत, बिना बोले ही, शांति का अनुभव, मैं शांत स्वरूप हूं बिना बोले ही उस स्वरूप का अनुभव, मैं बोलना नहीं है कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है। और परमधाम में 5 मिनट, 1 मिनट से चालू करेंगे, धीरे धीरे कहां तक पहुंचना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा केवल परमधाम में लटके रहना है। बाबा कहते हैं याद की फांसी में लटके रहो, यह है परमधाम के साथ स्वरूप। तो पहला, पहले तो याद कर लेना, पहले लिख लेना, स्टेप नंबर वन, एक ट्री ड्रॉ करना जिसको लिखेंगे परमधाम ट्री, या ट्री या नीचे परम, ऊपर लिखेंगे मी ट्री। पहला परमधाम, परमधाम में साथ कौन कौन से, स्वस्वरूप, निज स्वरूप, उसको टाइटल दो निज स्वरूप, जिसमें ब्रैकेट में रहेगा सात स्वरूप। दूसरा निर्वाण हूं, तीसरा निराकार हूं, चौथा निर्बंधन, पांचवा निराधार, छठवा निर्लेप, और सातवा निर्संकल्प हूं। ये सोचना है, क्योंकि नहीं जब सोचते हैं तो किधर भी भागती है फिर बुद्धि, भटकती है, उसका काम है भटकना। तो ये पहला। अब दूसरा आते हैं सतयुग में, बाबा ने इस मुरली में कहा है तुम्हारे इस पांचों ही चार का वर्णन है, ये सभी तुम्हारा पवित्र है, तुम हो ही पवित्र आत्रा, पवित्रता ही फाउंडेशन है, पवित्रता ही विशेषता है, वो सब बातें रिपीट रिपीट है, इसलिए वो सबको रिपीट नहीं कर रहे। दूसरा है सतयुग, सतयुग के सात स्वरूप, एक ट्री निकालना है उसमें लिखना है सतयुग, और उसमें सबसे पहला स्वरूप 16 कला संपूर्ण, दूसरा स्वरूप संपूर्ण निर्विकारी, तीसरा स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम, चौथा स्वरूप आत्म अभिमानी। देवताएं आत्म अभिमानी है ना, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, वो ऐसा बोलेंगे ही नहीं, परंतु वो स्वरूप में स्थित है, आत्मिक स्वरूप में स्थित है। दूसरा प्रश्न है क्या देवताओं की आत्मिक दृष्टि थी, आत्मिक दृष्टि नहीं है, स्वभाव है, इसलिए आत्मिक दृष्टि वहां पर प्रयोग शब्द नहीं है। बाबा क्या प्रयोग करते हैं, आत्माभिमान बस, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो जप करते रहते मैं आत्मा हूं या स्वमान लेते हैं, नेचुरल, और आत्मिक दृष्टि भी नहीं है, नेचुरल है। तो देवता अर्थात आत्म अभिमानी। अगला देवता अर्थात संपूर्ण अहिंसक, देवता अर्थात संपूर्ण अहिंसक, अगला देवता अर्थात मिलनसार, कई बार मुरलियों में आया है ये शब्द, देवताओं के लिए प्रयोग, कितने हो गए, 6। अगला देवता अर्थात सर्वगुण संपन्न, तो ये 7 स्वरूप है देवताओं के। पहला 16 कलाओं से युक्त हूं, अभी इसमें शब्द बदलने हैं, ये संपन्न संपन्न नहीं यूज करते रहना, हम लोग हर चीज में 2 शब्द लगाते हैं, मूर्त और दूसरा स्वरूप, आदत क्या पड़ गई है, मूर्त और स्वरूप, मूर्त हर चीज में मूर्त लगाओ और स्वरूप लगाओ, दोनों को हटाओ आप। हाँ, अभी नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, 16 कला परिपूर्ण हूं, 16 कलाओं से युक्त हूं, 16 कलाओं से सजा हुआ हूं, सुसज्जित हूं, सजा हुआ हूं, डेकोरेटेड हूं, शब्द बदल दिए, पहला श्रृंगारित हूं, दूसरा क्या है, संपूर्ण निर्विकारी, परिपूर्ण निर्विकारी हूं, निर्विकारी हूं, सब तरफ से निर्विकारी हूं, सर्वोपांग निर्विकारी हूं, ऑलराउंडर निर्विकारी हूं, शब्दों को बदलना है, ऑल इन ऑल निर्विकारी हूं, ऑल एंड आउट निर्विकारी हूं, सर्वांगिक, सार्वभौमिक तो नहीं तो हाँ, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, पूरी तरह से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से निर्विकारी हूं, शब्द बदलने हैं। तो इससे क्या होगा, मन को भी लगेगा हाँ कुछ तो हो रहा है, नहीं तो परम धाम और निद्रा लोक बहुत ही नजदीक है, इधर से उधर कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि परम धाम के भी ऊपर एक दूसरा लोक है, कुंभकर्ण लोक, निद्रा लोक। अगला, हाँ अगला क्या है? मर्यादाओं से परिपूर्ण हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, सारी मर्यादाओं का पालन करने वाला। अगला, आत्माभिमानी हूं। अगला, संपूर्ण अहिंसक हूं। केवल वही रिपीट नहीं करते रहना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, उसको बदलो, संपूर्ण अहिंसक हूं। अगला, मिलनसार हूं। इसके लिए दो तीन शब्द ढूंढो आज, और मिलनसार के लिए क्या क्या शब्द है। एडजस्ट करने वाली आत्मा, पर ये एडजस्ट हम ज्यादा संगम युग के लिए प्रयोग करते हैं। और मिलनसार, संस्कार, संस्कार मिलन भी फिर इधर आ जाता है सतयुग में अपना संगम पर। ये सारे शब्द यहाँ वाले, सबसे मिलना वाले, ओके, सबसे मिलने वाले, समान, समभाव, समानता, कोई भी हो वहां को, ये भेदभाव तो नहीं है तुम प्रजा हो आउट, ये तुम नौकर हो, कि फीलिंग ही नहीं, सहज है। समभाव, समदृष्टि, समदृष्टि, मिलनसार, पारिवारिक दृष्टि, सबके प्रति अपनेपन की भावना, ये अच्छा है, अपनापन है, किसके प्रति घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, यहां जैसा भेदभाव है वैसा नहीं है, वो नहीं है। स्कूल में समानता का पाठ पढ़ाया जाए, और गांव, वो एक मराठी में ये है शायद, समानता का पाठ, और गांव के बाहर महारवाड़ा वो अछूत लोगों को बाहर रखा हुआ है, और इधर इसका पाठ सिखाया जा रहा है ये हो गया सतयुग, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा स्वरूप, द्वापर का स्वरूप। तो इसमें सात रूप है। सबसे पहला, सोचो कौन, किसके स्वरूप है ये? उस देवता के, उस मंदिर में प्रस्थापित जो मूर्ति है उसके ये स्वरूप है। इसमें संगम के स्वरूप जोड़ना नहीं है, सबको अलग अलग रखो, नहीं तो हमारी आदत है सब मिक्स कर देना, उसको उधर ही रखो, केवल उससे रिलेटेड जो स्वरूप है वही। सबसे पहला भक्त वत्सल, द्वापर का पहला स्वरूप क्या है? वो देवता जो है, वो जो देवी है, जो हनुमान जी है, जो शंकर, जो भी है जिसकी पूजा हो रही है, संतोषी माता है, वो सब कैसे है? भक्त वत्सल, काली माँ। रामकृष्ण के लिए वो कौन थी? लोगों के लिए डरावनी देवी है, पर उनके लिए वो भक्त वत्सल माँ है, वो जननी है, जगत जननी है, जगन माता है, माँ 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 कहते हैं बस, दिन रात माँ माँ माँ, हर चीज माँ को पूछ के आता तोता पूरी करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें समाधि दिला सकता हूँ, वो कहते हैं वेट अ मोमेंट, मैं माँ को पूछ के आता हूँ कि समाधि में जाऊं या नहीं जाऊं, वो कहते हैं मैं तुझे संन्यास दीक्षा दूंगा, ये बोलते हैं वेट, माँ के, माँ को पूछ के आता हूँ संन्यास लू कि नहीं लू। इतना छोटा, इतनी निरागसता है, इतनी वो भाव है छोटे बच्चे वाले, लोग उनको उनके ही जीवन काल में कहते थे आप अवतार हो, अवतार वरिष्ठाय, तुम सबसे बड़े अवतार हो, कहते हाँ अवतार तुम ही हो, चलो मेरे। और वो एक बार झाड़ पे चढ़े थे और वहां से गिरे, फ्रैक्चर हो गया, तो उन सब भक्तों के पास कहने गए कि जो उनको कहते ना अवतार, बोले तुम्हारे अवतार का फ्रैक्चर हो देखो तुम मुझे अवतार कहते हो ना, ये देखो ये फ्रैक्चर लोग भी डर जाते थे, अरे क्या हो गया ये क्योंकि अवतार मतलब थोड़े चमत्कार वगैरह पुरुष होने चाहिए ना, कहते देख तुम वो इतना होता रही, देखो कैंसर, खा भी नहीं पाता, इतना दर्द। तो सबसे पहला भक्त वत्सल, दूसरा साक्षात्कार मूर्त, जो मूर्ति होती है उनके द्वारा क्या होता है? साक्षात्कार होता है। शंकराचार्य के जीवन में कितने सारे उसको साक्षात्कार हो जाते हैं अचानक, जितने भक्त है महाराष्ट्र के सारे भक्तों के जीवन में दिखा, तो कह रहा वो सब सबको साक्षात्कार होने लगते, विठल 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 विठल, वो विठल दिखाई देने लगता है, निराकार तो ईश्वर कसा प्रगटला उभा उभा विटेवर, वो उस ईट पर आ गया है, हा नाम्याची खीर चाकतो चोखो वांची गुरे राखतो, पुरंदराचा हा परमात्मा वाली नामाजीचा कानडा राजा पंढरीचा, उनके लिए वो ये नहीं है, वो व्यक्ति है, काम करता है, मदद करता है। वो जना भाई वो ये करती थी चक्की पर, वो रात भर वो सो जाती है, वो आता है, सब काम करता है उसको, भक्तों के वो काम करता है। भक्तों ये क्या है, भक्तों ने उसको नौकर के रूप में रखा है अपने घर में, पानी भी नहीं भरने के लिए। वेदा नाही कड़ला नाही अंत पार यात्रा, जिसको वेद भी जिसका ढूंढ रहे हैं उसको, वो क्या है, वो यहाँ भक्तों के घर में पानी भी नहीं भर रहा है, सेवा चालू है उसकी। ऐसा भक्तों ने प्यार से उसको बांधा है। निविकत घेतला शाम, मैंने शाम को खरीदा है, कुछ पैसे खर्च नहीं किए, फुकट में मिल गए, सबका ऐसे ही दिखाया है। तो क्या है वो साक्षात्कार मूर्त। अगला संहारी मूर्त, वो भक्त, अगर भक्त के जीवन में कुछ आ जाता है ना, उसी मूर्ति से भयंकर रूप प्रकट हो जाता है। फिर जैसे सती के लिए कौन प्रकट हो गया, किस रूप में, दक्ष के यज्ञ को किसने नष्ट कर दिया, भैरव, काल भैरव प्रकट हो गया और सब कुछ खत्म कर दिया। शिव को प्रलयंकारी, प्रलयकारी भी कहा जाता है। शिव कौन है, प्रलयकारी। एक तरफ शिव अर्थात मंगल, शिव अर्थात कल्याणकारी, तो दूसरी तरफ प्रलयंकारी भी है, तो संहारी मूर्त। हाँ, उसके साथ संहारी मूर्त भी है। तो देवी कैसी होती है, यहां आप देवियों को ले लो सारी। उसके बाद में अगला रहम दिल, देवी कैसी होती है, रहम दिल होती है, प्रेममयी होती है, रहम, उसके अंदर रहम ही रहम है, प्यार है, मां है ना वो, तो रहम दिल होती है। उसके बाद में अगला दिव्यता संपन्न, ये जो मूर्ति होती है ना कैसी, उसमें ना दिव्यता दिखाई देती है, सिंपल नहीं दिखती है, उसकी तरफ चाहे भी तो कोई विकारी दृष्टि नहीं जा सकती उस देवी की तरफ। उसकी चेहरा ही इतना पावरफुल होता है, कोई भी आ जाए वहां पर उसको कैसी दिखाई देगी, वो दिव्यता संपन्न दिखाई देगी। उसके बाद में शक्ति संपन्न, शक्ति रूपा है वो, दुर्गा काली शक्ति है उसमें। और लास्ट वरदानी, तो ये सात स्वरूप है इष्ट देव के। तो इष्ट देव अर्थात सबसे पहला भक्त वत्सल, भक्तों से बहुत प्यार है, और भक्तों के साथ अगर किसी ने पंगा लिया तो उसको वो देवता वो देवी छोड़ती नहीं है। इसके लिए दिखाया है जितने भी भक्त थे, जो जो उनके दुश्मन थे ना, आखिर में उनको शरण ही आना पड़ा, खुजली होने लगी शरीर में, ऐसी जलन ऐसी जलन ऐसी जलन। तुकाराम महाराज जो थे उसके लिए कहा गया कि तुम्हारे जो अभंग है गीत सारा गांव गाता है, वो कहता आज से अभंग मत करना। और तुमने और फिर वो लोगों ने दूसरा आक्षेप लिया, अब तक जो कुछ सुना है तुमने, वो जो लिख के रखा है ना तुम्हारी, वो सब डुबो दो नदी में। वो कहता है जैसे ईश्वर आ गया, वो सब डुबो देता है। और सात दिन तक वहीं पड़ा रहता है वो परिवार, कितने दिनों तक, सात से भी ज्यादा, भूखा। और वो फिर धरती से कोई देवी निकलती है और वापस दे देती है उसके सारे शास्त्र और लिखा हुआ सब कुछ। और वो जिसने किया होता ना, उसको इतनी आग मचती है पूरे शरीर में, आग, जलन 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 जलन। और जब उसकी शरण में आता है तो वो उसको तुकाराम महाराज विठल 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 पांडुरंग कहके तब कहीं वो जलन जाती है। तो जो भक्तों से पंगा लेगा ये देवी छोड़ेगी नहीं उसको। तो देवी अर्थात पहला भक्त वत्सल, दूसरा साक्षात्कार मूर्त, संहारी मूर्त, रहम दिल। रहम दिल में ही आप ऑब्लिक करके प्रेम स्वरूप भी डाल सकते हो। अगला दिव्यता संपन्न, शक्ति संपन्न, अगला वरदानी। तो ये सात स्वरूप है। अगला आ जाओ संगम युगी ब्राह्मण। तो संगम युगी ब्राह्मणों के स्वरूप, सबसे पहला है आत्माभिमानी या परमात्मा अभिमानी। देवताओं का था केवल आत्माभिमानी, संगम युगी ब्राह्मणों का दोनों जोड़ दो। यहां तो हजारों सोमान है हमारे, पर हम केवल मुख्य मुख्य लेंगे, जिसमें हजारों एक सोमान में हजारों सोमान समाये हैं। जैसे आत्माभिमानी में सब कुछ आत्मा रिलेटेड आ गया। फिर दूसरा है पवित्रता, संगम युगी ब्राह्मण अर्थात पवित्र, अब ये पवित्रता में हजारों सोमान आ सकते हैं। तीसरा है माया जीत या प्रकृति जीत, माया जीत में माया से संबंधित सारे। अगला है निरंतर सेवाधारी, अब इसमें आप सेवा से संबंधित जितने हैं सारे सर डाल दो अंदर। उसके बाद एवर रेडी, उसके बाद धारणा स्वरूप।
अब ये धारणा स्वरूप में जितनी धारणा वाली पॉइंट है वो सब, त्यागी हूं, वैरागी हूं, जो जो है सब कुछ इसमें आ जाएगा।
और लास्ट है इच्छा मात्रम अविद्या, ये सात। इच्छा मात्रम अविद्या में बहुत सारा आ गया, ये ग्रुप है एक। एवर रेडी में, एवर रेडी एक अलग ही समान है एवर रेडी रहना। निरंतर सेवाधारी, इसमें सेवा से संबंधित सब आ गया। धारणा में सब आ गया, सारी धारणाएं, त्यागी, तपस्वी, वैरागी। मायाजीत प्रकृति से एक अलग ही है, इसमें सारे विकार आ गए,
माया में सारे विकार आ गए, प्रकृति में प्रकृति से संबंधित सब आ गए।
पवित्रता और आत्माभिमानी, ये सात किसके हैं? ब्राह्मण। अभी आ जाओ फरिश्ते की तरफ, फरिश्ते के सात।
अब इसमें कई बार ओवरलैप हो जाता है, ब्राह्मणों वाले फरिश्तों में डाल देते हैं हम, पर ब्राह्मणों को अलग रखेंगे, फरिश्ते के अलग रखेंगे। फरिश्ते में सबसे पहले डबल लाइट, फरिश्ता कैसा होता है? लाइट, डीएल, डबल लाइट है वो।
एक्चुअल फरिश्ता देखो, ये फरिश्ता है और वो लाइट। दूसरा फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला,
फ्लाइंग, जो उड़ सकता है वो है फरिश्ता,
तो मैं उड़ने वाला हूं। तीसरा है अंतवाहक शरीरधारी, अंतवाहक शरीरधारी। चौथा है उपराम और साक्षी।
फरिश्ते कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं और साक्षी होते हैं, सारी चीजों को देखते रहते, धरती पर घूमते रहते हैं, साक्षी है।
अगला है परमात्मा संदेशवाहक। फरिश्ते कैसे होते हैं? वो संदेशवाहक है, संदेश देने के लिए। संदेश देना, आया, संदेश दिया और उड़ा, बाबा ने ये परिभाषा दी है। अगला है फरिश्ता अर्थात एक बाप से सर्व रिश्ते, ये फरिश्तों के लिए कई बार बाबा ने कहा है। भले ये संगम युग का आता है परंतु फरिश्ता रिश्ता ये बहुत बार जोड़ा है। और लास्ट है लाइट हाउस नाइट हाउस।
तो फरिश्ता अर्थात पहला डबल लाइट, दूसरा जो उड़ते हैं, तीसरा अंतवाहक शरीर है जिसके पास, अगला
उपराम और साक्षी है वो, अगला परमात्मा संदेश वाहक है वो। आया, दिया संदेश और उड़ गया, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो महिमा करो ना करो, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, नथिंग। अपना काम देना है बस, बस दे दिया और खत्म। वो ब्राह्मण बने ना बने उसके पीछे मत पड़ जाओ, तुमको लेना है तो ले लो, हमने बोल दिया खत्म, हमारा काम बोल दिया, अब चले जाओ अपने बिल में, अंदर छुप जाओ, चुप मौन। अगला लाइट हाउस माइट हाउस। तो ये पांच, और एक बाप से सर्व रिश्ते, एक से सारे रिश्ते।
तो ये पांच ट्री ऐसे निकालने हैं, इस ट्री के अंदर ये एक ऊपर डालना है, उसमें ये सात पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट हो जाने के बाद योग में बैठना है और फिर एक ही ले लो परम धाम, और उसके ये सातों जो है पहले याद कर लो और उनका अभ्यास करो, फिर उठ जाओ, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा एक देखो, फिर दोपहर में कभी बैठ जाओ और देवता की द्वापर वाली चीजें याद करो, कभी सतयुग की चीजें सात स्वरूप याद करो, कभी केवल सोचो फरिश्ता है, एकदम एक साथ मिलाना नहीं है, एक पर फोकस रखो केवल। फरिश्ता हो तो क्या क्या, उसकी भी एक स्टोरी बना सकते हो सातों पॉइंट की। जैसे फरिश्ता हो डबल लाइट, पहले कहीं से भी चालू करो, मैं उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं तो कैसे हो, डबल लाइट हो, डबल को भी हटा दो, मैं बहुत हल्का हूं, बोझ रहित हूं, बोझ मुक्त हूं, निर्भर हूं। अभी देखो ये नए शब्द डाल दिए, डबल लाइट का कोई इंप्रेशन ही नहीं बैठता है, निर्भर हूं, निर्बोध हूं, नए शब्द आजे डाल दिए। हाँ, फिर उसके बाद में मैं चमक रहा हूं, फिर बीच में कुछ अपने अपने शब्द डालो, मेन ये सात रखना, उसमें बीच बीच में भरते रहना कुछ सेंटेंसेस से। फिर मेरे सारे रिश्ते बाप से है, फिर वहां से उतर गया, फिर धरती पर संदेश दिया, एक ग्रुप था लोगों का, भीड़ भाड़ चल रही थी, लोग धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ रहे थे, तो फरिश्ता प्रकट हुआ, सबको साक्षात कर रहा है, कोई मुझ में सारे देख रहे, कोई क्राइस्ट को देख रहा है, कोई साई बाबा को देख रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई हनुमान जी को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और फिर वहां से निकल गया, तो आया, संदेश दिया और उड़ा। अब इसकी पूरी कॉमेंट्री बना दी हमने। फिर उसके बाद अगला क्या पॉइंट है हमारा, अंतवाहक शरीर द्वारा। तो अनुभव करो, मैं इस शरीर में हूं परंतु ये शरीर मेरा नहीं, अंतवाहक शरीर है मेरा, एक सटल बॉडी, लाइट बॉडी, एंजेलिक बॉडी, सटल एस्ट्रल बॉडी वाला है वो, कारण शरीर, अलग अलग नाम है। अगला उपराम हूं, ऊपर से ऊपर बैठा हूं और देख रहा हूं संसार में क्या चल रहा है, साक्षी हूं, उपराम हूं, सब दिखाई दे रहा है। अच्छा वो दो औरतें वहां लड़ रही है, अच्छा अच्छा वो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है,
अच्छा अच्छा वो देखो, वो दो ब्राह्मण, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। वो देखो एक डॉक्टर पेशेंट से क्या कह रहा है, तुम चिंता मत करो इसे मैं बचाऊंगा। और भगवान हंस रहा है, इसे मैं मारना चाहता हूं, और डॉक्टर कहता है मैं बचाऊंगा। भगवान को भी हंसी आ रही है, देखो वो दो भाइयों को कैसे लड़ रहे। वो कहता है ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी। फिर भगवान को देखो, भगवान देख कहता है सभी भूमि गोपाल की, और ये कहता है ये भूमि तेरी ये मेरी। सब देखना, अच्छी बातें भी देखो, बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है, अच्छा परिवार है, सब 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 साक्षी होकर देखना। तो ये भी तो कॉमेंट्री एक बना देना इसकी, तो एक एक पर फोकस करना। फिर कभी देवता वाला, कभी सतयुग वाला, और सतयुग में फिर एंट्री करो प्रॉपर। सतयुग में अभी एंट्री मतलब पहले दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला, फिर एंट्री। फिर पुष्पक विमान रखे थे, उसका कलर क्या था, सिंगल सवारी थी कि डबल सवारी थी कि बस ही थी पूरी, क्या था। सब प्रॉपर देखना है। पहाड़ देखो, पहाड़ भी डिजाइन, अलग अलग प्रकार के डिजाइन, अलग अलग। वहां के किचन में घुसो, इधर घुसो, उधर घुसो, वहां पे पार्किंग में घुसो, देखो पुष्पक विमान रखे हुए हैं, फ्री है, जिसको जहां बैठो बटन दबाया उड़ा। एक कपल्स के लिए खास, कुमार हो वहां घुसोगे तो नॉट अलाउड, लिखा है ओनली फॉर कपल्स। कुमार खुद ही स्वर्ग है, जन्नत है। तो ये सब देखना है। तो ये है पांच स्वरूप, ठीक है। अब इस मुरली में पांच पार्टियां है, ठीक है, और कोई साधारण पार्टियां नहीं है, लंबी लंबी पार्टियां है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी पार्टी, महापार्टी है। एक एक मुरली एक एक पार्टी, मतलब तो पांच पार्टियों को पांच लोकेशंस में डाल देंगे। कल वाले नए लोकेशंस, पहला लोकेशन है हमारा तेलवाड़ा, दूसरा अचलगढ़, तीसरा गुरुशिखर, फिर गौमुख और नक्की, जैसे कल किया था। पहले अच्छे से पढ़ लो उसको, फिर उसको सार देख लो कीवर्ड्स क्या है, और उसकी एक छोटी सी स्टोरी, और वो सारा हो रहा है कहां पर, नक्की झील पर। बहुत भारी है। तो ये हो गया ये पांच। फिर दूसरा जो है उसकी जो मुरली है मेन, वो खाली पढ़ लेंगे, उसका करना कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी जो मुरली है ये वाली, केवल पढ़ लो, या फिर पहली पहली। हाँ ये मुरली में एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, पर इसमें इसमें पांच ग्रुप्स है, तो वो पांच ग्रुप का सकाश बीके सकाश बॉडी हमने बनाई थी, याद है सबको, बीके सकाश बॉडी। कुमार को हमने वो चेंज करते जाना, नहीं तो बोलेंगे हम नीचे क्यों हम ऊपर क्यों, चेंज करते जाना। कुमारों को हमने सिर पर डाला था, फिर इधर कुमारियों को नहीं, इधर मधुबन निवासियों को रखा था, फिर कुमार, फिर कुमारिया हाथ में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, फिर टीचर्स, फिर माताएं, और अधर कुमार, और पीछे संसार की सारी आत्माएं, और हाथों में पांच खंड और पांच तत्व। ये था कुमार बीके सकाश बॉडी। अब इस मुरली में भी पांच लोग हैं। सबसे पहले कुमारों से मुलाकात छोटा सा है, पहले कुमारियों से, फिर कुमार से बहुत ही छोटा है, कुमार से मुलाकात, कुमारियों से मुलाकात, मधुबन निवासियों से मुलाकात, पांडवों से मुलाकात, शक्तियों से, माताओं से मुलाकात, अधर कुमार, और पांडवों के लिए अधर कुमार शब्द, पांडव मतलब अधर कुमार, माता, पांडव, अधर कुमार, कुमारी। तो ये पांच ऐसा डायग्राम बनाना है, उसमें मुख्य मुख्य एक दो लाइन जो है वो उतना ही लिखना है, इसमें पूरा के पूरा नहीं लिखना है। कितना लिखोगे, वो भी मुरली है पूरी, वो माताओं का कितना बड़ा है देखा क्या। नहीं ये पांच में से आ सकता है एग्जाम, वो मुरली में से कुछ नहीं आएगा, ये पांच है। तो ये पांच, ठीक है, तो ऐसी ये मुरली है। तो ये बहुत काम का बातें हैं जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में हमको करनी है। तो जीवन में क्या आ जाए, ज्ञान की बारिश। कौन सी बारिश? हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती, मोड़ों पर संभलती है, फिर निकलती है, वही बारिश में ये बारिश अक्सर गीली होती है। इसे पानी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। और साकार मुरलियों में भी बाबा ने क्या कहा है, एक ये साकार मुरली है जिसमें बाबा ने बहुत, जैसे सागर के ऊपर से बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर, जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है, वही बादल ही पानी भरकर फिर बरसात। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए, सागर के बच्चे बादल तो होना जो मीठा पानी खींच गए थे। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते, कई खूब जोर से बरसते बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते। तुम्हारे में भी ऐसे नंबर हमारे जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यहाँ भी ऐसे जो अच्छे बरसते उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते उनके दिल जैसे सुस्त हो जाते, पेट भरेगा नहीं, पूरी रीति धारण ना हो तो पेट जाकर पीठ से लगता है। फॉरन फैमिन होती है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है, यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं करते हैं तो पेट पीठ से लग जाता है। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब, गरीब का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी है। साकार मुरली 21/1/2020 ओम शांति। और क्या जो ओम शांति।
मेरे दोस्त वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। यह बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी नीर जीवन पाए अमृत उदम्बू भी कहते हैं। ग्रीक में इसे अक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में ओ और केमिस्ट में H2O कहते हैं। ये पानी आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घाघर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं।